أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی، کون؟ مَنْ يُعْجِبُكَ جس کی بھلی لگتی ہے آپ کو، قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی والی باتیں، یا جس کی دنیا والی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ اللہ کو اپنی نیک نیتی پر بار بار گواہ بناتا ہے. یہ تو ہے اس کے ظاہر کا حال، حالانکہ وَهُوَ لَدُّ الْخِسَامِ مگر حقیقت میں وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی علامات سے. وہ علامات کیا ہیں؟ آیت 205. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ بڑا بنتا ہے، یا پھر جاتا ہے، یا اس کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے، یا پھر جب یہ باتیں، بڑی بڑی باتیں کر کے لوٹتا ہے، کس میں؟ عملی زندگی میں، تو کیا ہوتا ہے؟ صَعَفِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، اور کیا کرے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور کھیتیاں برباد کرے، اور ون نسلہ اور نسل انسانی اور حیوانی کو تباہ و برباد کر دے. کیا اس کا یہ عمل اللہ کو پسند ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ حالانکہ اللہ، جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، یعنی گواہیاں اللہ ہی کے نام کی ڈالتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ جس کو فساد ہرگز پسند نہیں ہے. اتنی بات پہ ہی بات نہیں رکی، بلکہ جب اس کے اس غلط رویوں پہ لوگ اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ تو اس کا غرور اسے گناہ پر جمع دیتا ہے، یعنی یہ انا کے مارے پھر اور برا کام کرتا ہے کہ اب جو کہ تم نے مجھے ٹوک دیا، اب میں تمہیں برا بن کے دکھاؤں گا. یہ رویہ انجام کیا ہے ایسے شخص کا؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ اور وہ بہت ہی برا گہوارہ ہے. یہ آیات اور اسے اگلی چند آیات، اگر آپ ان کا مضمون دیکھیں تو یہاں سے دوبارہ نفاق کا تذکرہ ہے. آپ ان آیات کو سنتے وقت محسوس کر رہے ہوں گے کہ بالکل وہی انداز ہے جیسے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کا. وہاں کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور اس کے بعد آگے آپ دیکھتے جاتے ہیں اس کی سمٹمز، يُخَادِعُونَ اللَّهَ لَا يَشْعُرُونَ يَكْذِبُونَ يُفْسِدُونَ، ہاں اسی طرح کی چیزیں ہم نے پڑھی تھی. بالکل وہی سٹائل ہمیں یہاں دکھتا ہے. اصل میں جو ہم پیچھے سے باتیں پڑھتے آ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا رابطہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، تو ایک گروہ تو وہ تیار ہوا جو مخلصین تھے، اور بلکہ آپ لکھ ہی لیجئے، جب بھی دین کی دعوت اپنی انقلابی صورت میں آتی ہے، ریولیوشنری چینج آتا ہے، وہ کب آتا ہے یہ بھی سمجھ لیں پھر ساتھ ہی. ایک ہوتا ہے وہ رسمی دین جو باپ دادا کے نام پہ معاشروں میں چل رہا ہوتا ہے، صدیوں کی روایتیں، عربوں میں بھی چل رہا تھا باپ دادا کے وقت سے حج کا طریقہ، لیکن اس میں 100 قسم کی برائیاں تھیں، آج ہمارے اندر بھی چل رہا ہے. پھر اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے محمد رسول اللہ بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ہے ریولیوشن، جب لوگوں کے رسمی دین کے مقابلے میں اللہ کی رہنمائی آتی ہے. بات سمجھیے گا، لوگ خود کو بے دین نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے ہم کافر ہیں منافق ہیں، لیکن دین کا رخ بدل چکا ہوتا ہے، جیسے آج بدلا ہوا ہے. چند ریچولز کر لو تو مسلمان، نماز روزہ پڑھ لو تو مسلمان، صبح اٹھ کے ایک سپارہ پڑھ لو تو مسلمان، لیکن عملی زندگی بالکل کچھ اور ہے. یہی اللہ کے نبی کے دور میں تھا. تو جب بھی کبھی ایسی چینجنگ پوزیشن ہوگی نا، تو تین گروہ ضرور پیدا ہو جائیں گے. نمبر ایک، جو دل کی گہرائی سے یہ مان جاتا ہے کہ اس نبی کی دعوت سچی ہے، ٹھیک ہے، उसको यकीन होता है कि ये दावत भी सच्ची है, कॉज भी सच्ची है, और उसको ये भी पता होता है कि इस दावत का साथ देना खुद को भेड़ों के छज्जे में डालने के बराबर है। ऐसा गिरोह बगैर किसी नफे और नुकसान के, जिसको आप कहा करें कि इफ्स एंड बट्स में नहीं पड़ता, चल पड़ता है। इस्लाम की कश्ती तैरी तो हम भी तैरेंगे, इस्लाम की कश्ती डूबी हम भी डूब जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इस्लाम है तो हम हैं, नहीं है तो नहीं है। इसको इस्लाम कहता है मुखलिसीन का गिरोह, अपने जाती नफे नुकसान की परवाह किए बगैर इस्लाम के लिए काम करना शुरू करने वाले लोग। फिर है तो है, कुर्बानी आती है तो देंगे, हिजरत है तो देंगे, माल है तो लगेगा, जान है तो लगेगी, वक्त है तो लगेगा। ये पहला गिरोह होता है। सेकंड गिरोह शद्दोमत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस दावत की मुखालफत करता है, दूसरे एज पे खड़ा हो जाता है, अपोजर, ओपोनेंट, नहीं गलत, हम नहीं मानते, ये हमारे खिलाफ हो रहा है, ये लोगों को सख्त कर रहे हैं, ये रिजिड बना रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। ये दूसरा गिरोह भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पूरे कन्विक्शन के साथ कुफर की हमदर्दियां ले रहा होता है। देखिए, एक होता है, मोमिन दो किस्म के होते हैं, एक अल्लाह का मोमिन, एक शैतान का मोमिन। एक अल्लाह भी ईमान लाता है तो पूरे ईमान से लाता है, ये दूसरे गिरोह वाले, ये भी मोमिन है, लेकिन मोमिन लिल काफिर, मोमिन लिल शैतान। ये दो गिरोह होते हैं, इनके बीच में एक तीसरा गिरोह होता है, इसको समझ लीजिए, ये है इस वक्त हमारे सामने। ये गिरोह दिल की गहराइयों के साथ नबी की उस दावत से कन्विंस्ड होता है, उसको पता होता है कि ये दीन का काम है, ये बहुत अच्छा काम है, इसमें नस्लों की खैर है, इसमें इंसानियत की फलाह है, इसके करने में बहुत खैर है, कोई डाउट भी नहीं होता। लेकिन ये गिरोह अमल में नहीं आ पाता, वो कुर्बानियां नहीं दे सकता जो दीन के निफाज के लिए देनी पड़ती हैं, हालात को बदलने के लिए जो तब्दीलियां मतलूब होती हैं, इस गिरोह से वो नहीं होती। नतीजा क्या होता है? डिक्लेरेशन तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जब अमल की बात होती है तो वो कैसी बातें करता है, उसका तذکرہ आज हमारे सामने है कि वह मिन अन्नासी, और लोगों में कोई एक है ऐसा, कोई भी होगा। बास कहते हैं अखनस बिन शुरैक नाम के एक मुनाफिक की तरफ इशारा है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। कहते हैं कि ये शख्स जब बातें करता था तो इतनी खूबसूरत तरीके से बात करता था कि अल्लाह के नबी सुनते ही रह जाते थे। आपके पास आया, मुसलमान हुआ, वापस गया मक्का, और जाते जाते वहाँ के खेत और फसलें तबाह करता हुआ जानवरों को हांक के ले गया। बस कहते सिर्फ ही उसके लिए, लेकिन बातचीत दुरुस्त नहीं। यहाँ दर हकीकत हर वो शख्स जो ऐसा किरदार इख्तियार करे, उसकी बात है कि जिसकी जुबान पे बातें बड़ी खूबसूरत हैं, जिसको मीठी छुरी कह ले, जो इस्लाम पे बात करे तो बड़ी लच्छेदार बात करता है, बहुत बड़े बड़े जुमले बोलता है, दीनदारों में बैठे तो बहुत बड़ी बातें, लेकिन जब अमली जिंदगी में तवल्ला निकलता है तो उसका हाल क्या होता है? लियुफ्सिदा फीहा, उसमें फसाद डालता है। सवाल पैदा होता है कि फसाद क्या है? हमारे यहाँ फसाद का यह लफ्ज़ लड़ाई झगड़े और अखबार की उन सुर्खियों की रोशनी में समझा जाता है जो अक्सर हमारे मुल्कों में दिखती हैं। कराची में फसादात हुए, फलां जगह हुए, गोलियां बरसाई गई, हड़ताल हुई, हमारे यहाँ फसाद का लफ्ज़ यही है। लेकिन अगर आप भूले नहीं तो जिस रुकू का हवाला आपको यहाँ दिया गया, सूरत बकरा के सेकंड रुकू में आपको बड़ी डिटेल से बताया गया था कि असल फसाद क्या है। सिर्फ उसका समअप एक दो जुमलों में कर देती हूँ कि दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को नाफिज ना होने देना, अल्लाह के कानून को नाफिज ना होने देना ही फसाद है, चाहे अमन के नाम पे हो। बात वाज़े, पीस मेकर भी मुफसिद होते हैं अगर वो लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह से रोककर सिर्फ अपने दुनियावी कवानीन के नाते से करते हैं। अब होता क्या कि ऐसा शख्स जब दूसरों में इस्लाम हमदर्दियाँ पेश करता है तो बातें तो खूबसूरत करता है, उसको अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं, नतीजा क्या होता है कि वो अपने आप को इन बातों के दौरान इस तरह से यकीन दिलाता है कि सिर्फ बातें ही करके लोगों को खुश कर दूंगा, जिसको आप कहते हैं कि वो गुफ्तार का गाजी होता है, किरदार का नहीं, बहुत बातें करता है। इसका हल क्या होता है? जब इसको इस्लाम से कोई फायदा लेना होता है तो ये इस्लाम के गुण गाता है, मीठी मीठी बातें, बहुत लोगों को मोटिवेट करता है। लेकिन जब इस्लाम इसके रास्ते में एक रुकावट बनता हुआ नजर आता है तो फिर ये उस वक्त बिल्कुल दूसरे एज पे चला जाता है। अमूमन आप देखिए कि लोग कब खूबसूरत बातें करते हैं। नंबर एक, जब उनको सियासी वोट लेने होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि लोग हमें वोट दें और हम लीडर बन जाएं। जब लीडर बन जाते हैं तो क्या होता है? वह इज़ा तवल्ला, वली बना दिए जाते हैं, MPA, MNA, एम्बेसडर, कोई भी नाम रख लें आप इस तवल्लियत का, तो उस वक्त उसका हाल क्या है? सारे कवानीन, सारी बातें वो बनाई जाती हैं कि जो लियुफ सिदा फी हवयुह लिकल हर सवन नस्ल, उसकी सारी हमदर्दियां फिर सिर्फ अपने खानदान से रह जाती हैं, उसको आवाम की कोई फिक्र नहीं रहती। पहले तो कहते हैं आपकी सड़कें भी बनाएंगे, आपके गटर भी कह दें तो साफ भी कर जाते हैं। जिस दिन वोटिंग हुई उसका जश्न मनाया गया, उसके बाद वो उसको अपने बाप की मेराज समझ के, उस माल को अपना माल समझ के, सिर्फ अपनी मर्जी के लोगों को सेंक्शंस देना और उनको ही फायदे देना उसका काम रहता है, और गरीब के ऊपर और ज्यादा बोझ जाता है। क्या कभी आपने, मैंने ये तस्वीर देखी? हर वो किरदार जो ओहदा मांगता है इस सोच से कि मैं बड़ा बनूं, उसको आप इस एंगल से देख सकते हैं। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, किसी को जहन में भी ना रखिए। लोगों की बातों को नहीं देखना होता, लोगों के कामों को देखना होता है। ऐसे लोग जब इलेक्शन की कंपेन होती है तो ऐसे लगता है इनसे ज्यादा कोई मुखलिस नहीं। वो वोटिंग के जो बूथ होते हैं वहां जाके लोगों के बच्चों को भी उठा लेंगे, तोहफे भी देंगे उनको, लेकिन जब जश्न होता है उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे। एक तो इसका एंगल ये दिखता है, खूबसूरत बातें लेकिन अमल खराब। इस्लाम का मिजाज इस पे क्या है? इशारा कर देती हूँ क्योंकि बात छिड़ी है, कि इस्लाम क्या कहता है कि जो कहे कि मुझे बड़ा बनाओ उसको ना बनाओ। आप चारों खुलफाए राशिदीन को देख ले और उसके बाद आप बाद वाले दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज को देख ले, चारों के चारों खलीफा ने जब उनको खिलाफत नॉमिनेट की गई थी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तो उन्होंने एकदम हाथ उठा लिए थे, गिव अप, सॉरी आई कैंट, मुझे नहीं चाहिए। दूसरों ने तसलियां दी, नहीं, तुम ये काम कर लोगे। तो एक होती है बड़ाई इस रंग की लोगों से मांगनी कि जरा हम बड़े बने, हमें कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी। ऐसे लोगों को इस्लाम कहता है कि ना दो। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने वक्त के इतने खाते पीते रईस जाते थे, लेकिन जब इनको खिलाफत मिली तो सूख के कांटा हो गए। चुटकी काटो तो बदन पे इनके गोश्त नहीं था, सिर्फ स्किन थी। कहते थे कि मुझे गम क्या है कि अल्लाह मुझसे ये पूछ ना ले। अपनी बीवी को कहा कितना जरूरत है, बस उतना इस्तेमाल करो। हजरत उमर क्या कहा करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा रह गया तो ऐ उमर तुझसे उसकी पूछ होगी। खुद अपनी कमर पे बेवा औरतों का बोझ उठा उठा के घरों में छोड़ते थे। हजरत अबू बकर अपने दौरे खिलाफत में एक बूढ़ी औरत जो नाबीना थी, हर रोज सुबह जाकर उसका घर साफ करते, उसका पानी भरते, खाना पीना जो था रख के आते। किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी कि ये कौन करता है, क्योंकि वो नाबीना थी, उसको नहीं पता कौन आया है। और किस दिन पता चला? जब अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ और एक दो दिन तक उसके घर कोई ना आया, तो कहा ये अबू बकर ही थे जो आते थे। अब देखिए इस्लाम किस तरह बंदे को अपना मुहासबा करने के काबिल करता है। हम सब भी इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। हम बाज़ दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर आकर बिल्कुल समझ नहीं, हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरियत कभी इस्लामी नहीं हो सकती, ये एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हर बंदा जो इसमें है, फिर अब देखिए कि अमूमन एक और लच्छेदार बातें की जाती हैं, वो कब होती हैं? जब लोग लोगों से रिश्ते मांगते हैं। जब किसी का रिश्ता पेश किया जाता है तो हर खूबी उस लड़के में दिखाई जाती है और हर खूबी उस लड़की में दोनों तरफ से। के बाद सफा तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे इससे ज्यादा कोई नेकी नहीं है। ऐसी ही एक माँ थी, जब अपने बेटे के रिश्ते की बात कर रही तो कह रही, मेरा बेटा तो इतना नेक है, इतना नेक है कि हर रोज जुम्मा पढ़ता है, हर रोज जुम्मा पढ़ता है। वो जिसको आप सुनते हैं ना, फाफो कुटनिया, रिश्ते कराने वाली औरतों का मोमन कहते हैं ना, वो एक करेक्टर भी ऐसे थे मारूफ, राबू फब्बे कुटनी है। मुंडा की ये नेरा फरिश्ता, जंदे जुल्दे पान ले अंदा, यानी वैसे लड़का फरिश्ता लेकिन लोगों के ताले तोड़ के चोरियां कर लेता है, शराब भी पी लेता है जब कोई औरत उसके साथ होती है, तो वैसे मुंडा बड़ा फरिश्ता है। यानी बाज दफा ऐसे वक्तों पे लोग ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं कि ऐसे लगता है किससे अच्छा कोई नहीं, लड़की है या लड़का, लेकिन जब अमली मैदान में आते हैं तो हो सकता है कि लड़की का जेवर भी रख के उसको थोड़े ही महीनों में फारिग कर दे, है ना। बातों से क्या होता है, आप सोचे जरा, बातों से क्या होता है, सारा दिन बैठ के बातें करते रहे, मीठी मीठी करें, क्या वो स्वीडिश के मुकाबले पे आपका पेट भर देंगी, नहीं करेंगी ना। तो मैं यो जिब का कौलू हो पे लहयाते दुनिया। तीसरा आप देखिए कि एक और मुकाम हमें लोगों की खूबसूरत बातों का दिखता है, और वो क्या है कि जब लोग सुपर पावर्स के नाम पर इंसानी हकूक का नाम लें, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, एनिमल राइट्स, लेबर राइट्स, किड्स राइट्स, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम राइट्स की बात करते हैं, लेकिन असल में वो कवानीन के जो इंसानियत का खून चूस लें, अपने मुफादात के लिए सियासी तौर पे लोगों को गुलाम बनाना, अपने मुल्कों का वो नक्शा बाहर के मुल्कों में पेश करवाया जाता है कि जिसको देकर राल टपकती है हम जैसों की, लेकिन दूसरों के मुल्कों में उनकी आबादियों पे कंट्रोल, सिर्फ मुसलमानों की आबादी पे कंट्रोल क्यों, उनके मुल्क की जमीनों पे कंट्रोल, ये तो एक लंबी कहानी है, इसको तो आप मेरी बजाय जाके खुद ही रिपोर्ट्स में पढ़ लें कि किस तरह से वो दवाइयाँ जो अपने मुल्कों में बैन है, हमारे मुल्कों में इश्तहारात दिखा दिखा कर लोगों को खिलाई जाती हैं। इसी तरह से हर वो चीज़ जिस पे मुसलमानों का कब्जा होना चाहिए तो उस पर नजर दूसरों की है। तो आप देख सकते हैं कि ये आयत फर्द पे भी है, एक फर्द भी ऐसा हो सकता है मिनन नास, ये हुक्मरानों पे भी आती है और ये सुपर पावर्स पे भी आती है। जितना एंगल बड़ा होता जाएगा ना, उतना ही ज्यादा उस वक्त लोगों का मामला इस किस्म का होता जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि असल में देख लो ये क्या है, बहुवालदुल खिसाम, बहुत झगड़ालू है, सख्त झगड़ना, अगर आप देखें ना, सख्त झगड़ना और दूसरा सख्त झगड़े करने वाला, ये दोनों मानों में आता है, ग्रामर में उलझाए बगैर आपको बता रही हूँ, यानी अमली तौर पर झगड़ालू है। अल्लाह के नबी सल्लम ने भी यही फरमाया था कि मुनाफिक की अलामतें उनमें एक क्या है कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा और जब झगड़ा होगा तो गालम गलोच पे आ जाएगा। अल्लाह सुबहाना तआला इधर हम सबको सोचने का एक नुक्ता देते हैं, और वो क्या है कि तुम अपने आप को देख लो। अब हम में से ना तो कोई सुपर पावर है खैर से, और ना हम में से कोई सियासी लीडर है, लेकिन आप और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी अथॉरिटीज़ को देख लें। हर माँ भी एक अथॉरिटी रखती है, दो चार बच्चों पे, घर उसकी रियाया, घर एक किंगडम ही है ना औरत की, जो चाहे करे, जहाँ चाहे करे, जिस तरफ ले जाए। इसी तरह आप देखिए कि हम किसी जगह पढ़े हैं, किसी जगह अल्लाह ताला हमें कोई उस्ताद बना देता है, ग्रुप लीडर बना देता है, कोई हमारे हाथ में ओहदा आ जाता है, कोई काम की मैनेजमेंट आ जाती है, इसके ऊपर गौर करना है कि मेरा उस वक्त रवैया क्या होता है। एक होता है अल्लाह के दीन को सर्व करने की नीयत से कुछ करना, वो तो है इबादत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसकी मिसाल है, 13वें पारे की पहली आयत तो मैं पढ़ लेंगे, उन्होंने खुद कहा था कि मुझे ज़मीन के ख़जानों का मालिक बना दो, क्यों तुम्हारे ख़जाने लूट के ले जाऊं, नहीं पता था कहत के साल आ रहे हैं तो तुम नहीं मैनेज कर सकोगे, मुझे अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें दी हैं मैं कर लूँगा, ये तो है इबादत। आपको पता है कि आपके अंदर एक खूबी है, आप इस काम में अच्छे हैं, ऑफ़र कर सकते हैं, आप वॉलंटियर फॉर्म फिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत प्लीजिंग बात है, ये तो वही है जिसका आगे जिक्र आने लगा है। लेकिन अगर खुद को सर्व करने के लिए दीन की सर्विंग का नाम लगा लें, ये है दाल में काला। बस लोग जाहिर दीन का काम करते हैं लेकिन वो अपना काम करते हैं, बज़ाहर दीनदारी है, अंदर दुकानदारी है। बज़ाहर लगता है कि हम दीन की दौलत जमा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो दुनिया की दौलत जमा करते हैं। और जब मजहबी तबके में ऐसा जवाल आता है, तो मुसलमानों की वो हालत होती है जो आज हमें दिखती है। ऐसे लोगों की निशानियां क्या है कि बात बात पे अपनी सदाकतों की बातें, युश्किदुल्लाह अला मा फी कल्बिक, बड़े मुखलिस हैं। ऐसे लगता है कि बस सब कुछ हम, आपको पता है हम कितने मुखलिस हैं, आपको पता है कि हम इस्लाम की कितनी मोहब्बत रखते हैं, दिस एंड दैट, अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए कसमें खाते हैं। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि तुम इनकी बातों पे ना आओ, पहचानो। कैसे पहचानो? अब अगली आयत को जरा गौर से सुनिएगा।